नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जब्बल। हमारे जीवन के कई पहलुओं की तरह यूनिवर्सिटीज और छात्रों को भी कोरोना महामारी के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ छात्रों के अनुसार उनकी शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा बाकी सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिलहाल ना कोई खेल है, ना गतिविधि, ना कोई लैब्स और ना क्लास में जाने और लेक्चर में बैठने की कोई सुविधा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की है कि यूनिवर्सिटीज की पूरी तरह से खुलने के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं। उधर यूनिवर्सिटीज का कहना है कि सुरक्षा के कारण इन सुविधाओं पर अंकुश जरूर लगाए गए हैं, लेकिन इनसे जुड़े खर्चे अभी तक जारी हैं। ऑनलाइन शिक्षा में बदलाव के लिए यूनिवर्सिटीज को भी नए तरीके अपनाने पड़े हैं। COVID-19 के जवाब में शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोनाश यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से मोनीश पुरी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी की बैचलर ऑफ कॉमर्स और डिप्लोमा ऑफ लैंग्वेज की मीशा सेठी और मोनाश यूनिवर्सिटी की अध्यापिका डॉक्टर रूबी रंजन। मोनीश, कोविड महामारी के दौरान आपकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसी रही है?
जी, तो पिछले वर्ष कोविड महामारी लॉकडाउन के दौरान हमारी सभी कक्षाएं ऑनलाइन थी। अन्य महत्वपूर्ण कक्षाएं जो हमारी शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और जरूरी है, जैसे कि क्लिनिकल स्किल्स एवं डाइसेक्शन कक्षाएं की गुणवत्ता दूसरे वर्षों से कम रही है। सौभाग्य से इस वर्ष हम चिकित्सा विद्यार्थी अस्पताल जा रहे हैं और हमें क्लिनिकल स्किल्स एवं पेशेंट के साथ संचार करने का मौका मिल रहा है, परंतु हमें डाइसेक्शन कक्षाएं करने का मौका अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा जैसी डिग्री ऑनलाइन पढ़ना और सिखाना काफी मुश्किल है और सभी विश्वविद्यालय का यही अनुभव रहा है। और तो और, ऐसी भी कक्षाएं होती थी जहां एक अध्यापक 50 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, और इसका मतलब ये था कि समय की कमी होती थी और हमें प्रश्न पूछने का अवसर भी नहीं मिलता था। तो यही कुछ समस्याएं थी हमारी।
तो मोनीश, क्या इस साल यूनिवर्सिटी ने आपको कोई वित्तीय सहायता या डिस्काउंट की सहूलियत दी है?
जी, तो पिछले वर्ष विद्यार्थी स्टूडेंट सर्विसेज और अमेनिटीज फीस का भुगतान कर रहे थे। यह खर्च का भुगतान तब किया जाता है जब विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की फैसिलिटीज का प्रयोग करते हैं। खासकर 2020 में जब हमने इन फैसिलिटीज का प्रयोग नहीं किया था, शायद हमसे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम इस खर्च का भुगतान करें।
जी, तो मोनीश, आखिरी सवाल आपके लिए ये कि COVID-19 का शिक्षा पर प्रभाव और छात्रों की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार किस तरह से मदद कर सकती है?
जी, तो सरकार को विश्वविद्यालयों का समर्थन जरूर करना चाहिए। कैजुअल टीचिंग स्टाफ काफी प्रभावित हुई है क्योंकि विश्वविद्यालयों के पास पैसा नहीं है अपने स्टाफ को देने के लिए। अगर सरकार विश्वविद्यालयों को ज्यादा आर्थिक समर्थन दे तो हमारी यही आशा रहेगी कि हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है और जो क्वालिटीज है उसके हिसाब से हम अपने फीस का भुगतान करें।
मीशा सेठी, नमस्कार। ये आपका तीसरा साल है यूनिवर्सिटी में और पिछले 1.5-2 साल से आपके सभी लेक्चर्स ऑनलाइन रहे हैं। इससे आपकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
So overall, teachers have done a great job of moving to online classes, but the university started to, especially with my commerce subjects, they've started to put about 3 to 4 times the amount of students in the same tutorial. So rather than having 10 to 20 students in a class, in a real life situation where you can ask questions and go at a slower pace, we would have about 40, 50, 60 sometimes, depending on the subject, students in a tutorial. So obviously this makes it hard to ask questions, to stop the tutor. So in that way, the quality of teaching has gone down. There's less interaction with the teacher themselves. Secondly, you get less feedback on your work. So, for example, I did a law subject last semester, and we were not allowed to send in our reports to get feedback on the report because the teachers would not respond to emails. You had to go to specific Zoom consults with them. And in that Zoom consult for 1 hour, if you have 40 students show up, you know, each student would get about 2 minutes. So the teachers lecturing and the teaching hasn't gone down, but the quality of your feedback and the ability to ask questions, that's definitely gone down.
So the engagement is not the same.
Yeah, 100%. Just that feedback loop of how you develop and learn what they teach you, that's gone down.
तो मीशा, क्या आपको लगता है कि कोविड के चलते यूनिवर्सिटीज़ या सरकार को छात्रों के लिए किसी किस्म की रियायत देनी चाहिए?
So for me personally, for HECS, that's the student loan that I have, there's two parts. So the first part is for your each subject, and the second part is called the student amenities fee for using the university facilities and etc. So in terms of the actual subjects, that I would understand if they can't give you a lot of that feedback because the teachers, they still have to pay for the content. But we are still paying a student amenities fee, which is about $200 to $300 each semester. And we're not getting to use any of those amenities. So if you look at that over the last 2 years, it's about at least $800 over the last 2 years. For amenities, we're not getting to use. We haven't even been on campus since the start of last year. So I definitely think at least a part of that should be going back to students, because that fee for most kids gets added on to their HECS. So obviously in the future, that's something they have to pay back.
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रंजन मोनाश यूनिवर्सिटी से. आप एक साल से अधिक से समय से यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं. आपका अनुभव इस समय में क्या रहा है?
प्रीति, देखिए, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अर्थव्यवस्था में शिक्षा क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. यदि हम विश्व से तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक तिहाई अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने को आते हैं. ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि एक विशाल उद्योग भी बन गया है. जाहिर है, कोरोना काल की महामारी में सारे शैक्षिक संस्थानों पर गहरा असर पड़ा है. शैक्षिक परिसर में बदलाव आया है. दोनों शिक्षा ग्रहण करने में और शिक्षा प्रदान करने में दोनों में परिवर्तन आया है. प्रीति,
तो डॉक्टर रंजन, आपके अनुसार कोविड के दौरान यूनिवर्सिटीज को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और कौन से ऐसी सुविधाएं और उपकरण हैं जिनमें उनका खर्चा हो रहा है?
अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि प्रीति की पहले हमारे पास समस्याएं नहीं थी. अगर कोविड से पहले देखे तो समस्याएं पहले भी थी. तो जैसे कि क्लास में टाइम से पहुंचना, पार्किंग की तो हमेशा ही एक बड़ी समस्या होती थी और रही है, और फिर लेक्चर थिएटर में सारे टेक्नोलॉजी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं इत्यादि. ना अब देखें कि कोरोना काल में अब ये देखें कि हम दूसरी तरह की समस्याएं हैं. तो कैंपस लाइफ छिन भिन हो गया है, लेक्चर थिएटर्स खाली पड़े हैं, लाइब्रेरी खाली है, सोशलाइजेशन या जो एक समाजीकरण विद्यार्थियों का होता है वो अब सीमित है. तो मेरा कहना ये है कि समस्याएं तो आई, चुनौतियां भी बहुत सारी आई, लेकिन प्रीति मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम मनुष्य में एक खासियत है, एक असीम शक्ति है अपने आप को अडेप्ट करने का. परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को वैसे अनुकूल बना लेते हैं या परिस्थिति के अनुरूप कार्य करते हैं. शैक्षिक संस्थानों में अगर कोरोना काल में और हम जैसे देख रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, जहां विश्वविद्यालय पूर्ण तरीके से तो नहीं लेकिन कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे आंशिक रूप से खोला जाए. तो इस दौर में जहां क्लासेस दोनों ही सूरतों पे ले जा लिए जा रही है. तो ज्यादातर लॉकडाउन स्थिति में और थोड़ा थोड़ा साधारण अवस्था में आने की तैयारी, उस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है. तो इसमें मैं कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, जिसके चलते ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह हम अपने आप को रूपांतरित अडेप्ट कर पा रहे हैं. तो इसमें तो एक निश्चित तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका है. तो जैसे पहले हम देश की दूरी हवाई यात्राओं से कम कर रहे थे और कर रहे हैं, और जिस आसानी से हम यात्रा कर सकते हैं, यह सुविधा ग्लोबलाइजेशन फैलाने में या विश्व को छोटा करने में सुगम थी और सुगम है. लेकिन अब कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि लोगों की आवाजाही बंद है, विद्यार्थी यात्रा नहीं कर सकते. लेकिन जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका है ग्लोबलाइजेशन को कायम रखने में. और ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी को जो एक बहुत बड़ा समूह है, तो इनको बनाए रखने में तरह तरह की टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हुआ है. तो जैसे जूम हुआ, अल्ट्रा कोलैबोरेट हुआ, पैडलेट वॉल्स हुए. तो इन सब के द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं. ये सब टेक्नोलॉजीज का शैक्षिक संस्थानों में अधिक से अधिक उपयोग हुआ और प्रयोग दोनों किया जा रहा है. तो जो और जैसे फेस टू फेस क्लास है, जैसे मैं पहले कही कि अब थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फेस टू फेस क्लासेस को लाने में, तो उसमें भी हर तरह की सुविधाएं जिससे कि हम सब कोरोना की चपेट से सुरक्षित रहें, वो मुहैया किया जाता है. तो आप सारे शैक्षिक परिसरों में देखेंगे कि जैसे हर लेक्चर थिएटर में सैनिटाइजर्स हैं, फेस मास्क उपलब्ध हैं, लोगों को हिदायत भी दी गई है कि 1.5 मीटर की दूरी में बैठना है. तो सारांश में हम ये कहें कि दूसरे संस्थानों की तरह शैक्षिक संस्थान भी विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. और इस पहलू में हम एक और पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्यता बनाए रखने का भी. एक कोरोना काल में अब हम देख रहे हैं कि अनेक मानसिक मुद्दे आए, जिसमें कि अकेलापन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. इसमें दोनों विद्यार्थियों का और अध्यापकों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है. तो इस विषय में भी शैक्षिक संस्थान का बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं और काफी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं. तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, बड़े सारे चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालयों में, अपने परिसरों में. ये इस बात का इंतजार है और विश्वास भी है कि फिर से हम सामान्य स्थिति में आएंगे, फिर से शैक्षिक परिसर में छात्र छात्राओं की चहल पहल सुनाई देगी, कैफे में चाय और कॉफी की कपों की खनखनाहट भी सुनाई देगी, लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की भीड़ भी दिखाई देगी, अध्यापक का जल्दी जल्दी एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर थिएटर में जाने की लपक भी दिखाई देगी, और जो एक कैंपस लाइफ होता है वो फिर से सजीव जरूर होगा. तो इसी आशा के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रीति जी.